हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے من صلى علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ। इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दिन भर में 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, यह है प्रोग्राम अहकाम नमाज और हम आपको इसमें खुश आमदीद कहते हैं। हो सके तो बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नियतें भी फरमा लीजिए कि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। मदनी चैनल के नाज़रीन, नमाज के उलमा ने बेशुमार फवायद बयान किए हैं। कुरान मजीद में भी नमाज पढ़ने के बेशुमार फवायद मशकूर हैं। आइए चंद एक समात फरमाइए। नमाज की पाबंदी मुत्तकियों, कामयाब ईमान वालों और इज्जतदार जन्नतियों की निशानी है। अल्लाह तबारक व ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सला व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। अलिफ लाम मीम के बाद ये बात इरशाद फरमाई कि ये जो किताब मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, यानी कुरान करीम, इस किताब में कोई शक नहीं है, परहेजगारों को राह दिखाने वाली किताब है, हुदल लिल मुत्तकीन, और ये अहले तकवा कौन लोग हैं, फरमाया जो बिन देखे ही ईमान लाते हैं और नमाज को कायम करते हैं और हमारे दिए हुए माल से अल्लाह तबारक व ताला की राह में खर्च करते हैं। यकीनन ईमान वाले जो हैं वो फलाह पाने वाले हैं, फलाह को हासिल करने वाले हैं, और फलाह को जो हासिल करने वाले ईमान वाले हैं उनके भी चंद औसाफ कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाए, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, तहकीक के ईमान वालों ने फलाह हासिल की। ये कौन से ईमान वाले हैं जिनके औसाफ आगे जिक्र किए जा रहे हैं, अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं, यानी ये जो नमाज है ये मुत्तकियों की अलामत है, ये तकवा को इख्तियार करने वाले हैं, ये कामयाब मुमिनीन हैं। इस बात से पता चलता है कि ये अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं। और एक दूसरी आयत मुबारका में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं, یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور سورۃ المعارج میں فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون, اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے. نماز کی جو پابندی ہے یہ حصول رحمت کا ذریعہ ہے. سورہ نور میں آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا نماز کی پابندی کرو, نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو. کیا ملے گا؟ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسے پتہ یہ چلا کہ نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ذریعہ ہے. یعنی بندہ اگر چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت ملے اسے چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے, اور نماز گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے, سیدنا ابو ہریرہ اور اس کے راوی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, فرمایا پانچ نمازیں اور جمعہ کی نماز اگلے جمعہ تک, اور رمضان کے روزے اگلے رمضان کے روزوں تک, ان صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان میں واقع ہوئے, بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے. صغائر کی توبہ یا صغائر کی جو معافی ہے وہ اس دورانیے میں اللہ رب العزت بندے کو عطا فرما دیتا ہے. یعنی یہ نمازیں ہی بندے کے لیے گناہوں کی معافی کا, گناہ کے مٹانے کا سبب بن جاتی ہیں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت ہے, میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, فرمایا بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے نہر جاری ہو اور وہ اس میں دن بھر میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن کے اوپر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچل باقی نہیں رہے گا. ڈیفینیٹ کہ بندہ صرف ایک مرتبہ نہا لیتا ہے تو اس کے بدن سے میل کچل دور ہو جاتا ہے, اور جب دن بھر میں پانچ مرتبہ غسل کرے تو اس کے بدن پر میل کچل کیسے باقی رہے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا اسی طرح پانچ نمازوں کی مثال ہے. اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کی وجہ سے رب کائنات بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور مدنی چینل کے ناظرین ایک فائدہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالی کے قرب خاص کا ذریعہ ہے, اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہر مومن کی ضرورت ہے اور اس کی خواہش ہے, اس کی تمنا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے, اور اللہ کا جو قرب ہے وہ نماز سے حاصل ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے اس کا بہت زیادہ قرب ہوتا ہے, اور پھر نماز اللہ تعالی کے ساتھ ہم کلامی اور سرگوشی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے آگے نہ تھوکے, اس لیے کہ وہ جب تک نماز میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے سرگوشی کرتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے یہ. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہوگی وہ نماز میں ہرگز بھی سستی نہیں کر سکتا, کیونکہ جس سے محبت ہو اس سے باتیں کرنے کو انسان کا جی چاہتا ہے, اور نماز اللہ تعالی کے ساتھ سرگوشی ہے, مناجات ہیں اور ہم کلامی ہے. دعا तो फिर इसका क्यों नहीं दिल करेगा कि वो नमाज पढ़े। तो मोमिन कामिल जो है वो नमाज में हरगिज भी सुस्ती नहीं कर सकता। तो आइए मदनी चैनल के नाज़रीन आज के सिलसिले में चंद एक अहकाम नमाज भी शामिल करते हैं। पहला सवाल जो आज के सिलसिले में हम शामिल करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह है कि नमाज असर और नमाज इशा फराइज अदा करने से पहले जो चार सुन्नतें अदा की जाती हैं ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। अब इनमें सवाल ये है कि जब दो रकत अदा करने के बाद पहले कादे में बैठेंगे तो क्या वहां अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद पाक और दुआ भी पढ़ेंगे? यूं ही जब तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे तो क्या सूरतुल फातिहा से पहले सना भी पढ़ना होगी? तो इसका जवाब यह है कि असर और इशा के फर्जों से पहली वाली जो चार सुन्नतें हैं ये चूंकि सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं तो इनमें जब दो रकत अदा करने के बाद पहले कादे में बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़कर दुरूद पाक भी पढ़ा जाएगा और दुरूद पाक के बाद दुआ भी पढ़ें और तीसरी रकत में सूरह फातिहा से पहले सना पढ़ी जाएगी, फिर तावुज तस्मिया और सूरतुल फातिहा की तिलावत की जाएगी। और ऐसा करना यह बेहतर अमल है क्योंकि यह सुन्नत गैर मुअक्कदा है और गैर मुअक्कदा जो सुन्नतें हैं यह नवाफिल के हुक्म में होती हैं और नवाफिल में हर शुफा यानी हर दो दो रकत जो है वो अलग नमाज होती है और अगली दो रकातें ये अलग नमाज है। तो ये चार हैं तो गोया दो दो हैं तो हर दो को पहली वाली दो के तरीके पर ही इन्हें अदा किया जाएगा। लेकिन फर्ज कर लें अगर किसी ने अत्तहियात के बाद सुन्नत गैर मुअक्कदा में दुरूद पाक ना पढ़ा, यूं ही उसने दुआ भी नहीं पढ़ी और तीसरी रकत की इब्तिदा में उसने सना भी नहीं पढ़ी, तब भी उसकी नमाज तो हो जाएगी लेकिन सवाब से महरूमी का बाइस बन जाएगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि अत्तहियात के बाद दुरूद पाक और दुआ भी सुन्नत गैर मुअक्कदा में पढ़ी जाए और तीसरी रकत जब इब्तिदा करें तो सना भी साथ में मिला ली जाए। मजीद एक और सवाल आज के सिलसिले में शामिल करते हैं। अगर नमाज में सजदा सहव वाजिब नहीं हुआ लेकिन भूल कर सजदा सहव फिर भी कर लिया गया तो फिर ऐसी सूरत में नमाज का क्या स्टेटस होगा? क्या नमाज हो गई या दोबारा से पढ़ना यह जरूरी है? इस हवाले से बात जहन में रहनी चाहिए कि बिला हाजत सजदा सहव करना यह ममनू है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि बगैर किसी वजह के सजदा सहव कर लिया, लेकिन अगर कर लिया जाए तब भी नमाज हो जाएगी। हां अगर इमाम हो और उसने एहतियातन सजदा सहव किया या भूल कर सजदा सहव उसने कर लिया है तो इमाम साहब और वो मुक्तदी के जो पहली रकत में इमाम के साथ शामिल हुए थे इन सब की नमाज हो जाएगी। लेकिन वो मुक्तदी जो मसबूक मुक्तदी होते हैं, मिसाल के तौर पे जिनकी कुछ रकतें रहती हैं यानी इमाम साहब की एक रकत पढ़ लेने के बाद वो आकर नमाज में शामिल हुए उसे मसबूक मुक्तदी कहते हैं। उसे इमाम के साथ तीन रकतें मिली या दो मिली या एक मिल गई या तशहुद में ही इमाम के साथ शामिल हुए तो ये मसबूक मुक्तदी है कि इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी बकिया रकातें ये पढ़ने के लिए खड़े हो जाते। अब उस नमाज में कि जिसमें इमाम साहब ने बिला हाजत सजदा किया अगरचे भूल कर किया हो या एहतियातन कर लिया हो तो ऐसी सूरत में उन मसबूक मुक्तदियों को नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इमाम साहब और पहली रकत में शामिल होने वाले जिन्होंने इमाम साहब के साथ सलाम फेर दिया और रकातें मुकम्मल कर ली इनकी नमाज हो जाएगी। मजीद एक सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। सवाल यह है कि आजकल कई नौजवानों को देखा गया है कि हाथों में कड़े पहने होते हैं। कड़ा बसा औकात पीतल का होता है, कभी चांदी का होता है, कभी लोहे का होता है और वो इसी हालत में चूंकि मुसलमान है आके नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो अब इस हालत में कि उनके कलाई पर कड़ा है, हाँ वो तांबे का है या वो लोहे का है, अब कड़ा तो पहना हुआ है, इसी हालत में नमाज पढ़ ली, तो अब किसी भी धात का ये पहना हुआ कड़ा क्या नमाज में मुखिल तो नहीं? नमाज हो जाएगी या नमाज दोबारा पढ़ना लाजिम है? सबसे पहले तो ये बात जहन में रखिए कि मर्दों के लिए किसी भी धात का कड़ा पहनना ये जायज नहीं है। हाँ, वो लोहे का है, पीतल का है, वो चांदी का है, इवन के कोई भी धात हो, उसका कड़ा पहनना मर्द के लिए जायज है ही नहीं, उसे शरीयत ने इजाजत ही नहीं दी। और ऐसा काम करके जो कड़ा पहना है ये नाजायज था, इसको पहन कर जब नमाज पढ़ी तो नमाज मकरूह तहरीमी हो गई। यानी इस हाल में नमाज अदा करना ये गुना है, और अगर कर ली है तो गुना अपनी जगह पर है, उसकी माफी अल्लाह ताला की बारगाह में मांगनी पड़ेगी। और बाद में इस नमाज का इयादा करना, इस कड़े को उतार कर, ये भी लाजिम है, क्यों कड़ा पहने ही दोबारा इयादा कर लेंगे, फिर नमाज का स्टेटस तो वही रहेगा, तो इसलिए कड़ा उतार कर फिर नमाज पढ़ना ये लाजिम है, ये इनके जिम्मे वाजिब रहेगा। तो बेहतर यह है कि ऐसा अमल ही ना करें कि जिसकी वजह से एक गुनाह लाजिम आए, एक नाजायज काम करना पड़े, और फिर नमाज का इयादा करने की हाजत पेश आ जाए। तो ऐसा अमल एज ए मुस्लिम हमें करना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे चैनल के नाज़रीन, आइए आज के सिलसिले में चंद एक रिकॉर्डेड सवालात भी हम शामिल करते हैं। ये सवाल चलाइए।
मेरा ना मुफ्ती साहब से सवाल था, अगर कोई शख्स 3 बार जानबूझकर जुमा छोड़ दे, क्या वो काफर हो जाता है?
जुमा फर्जे ऐन है, इसकी जो फर्जियत है ज़ोहर की नमाज से भी ज्यादा मुअक्कद है। जो इसकी फर्जियत का इनकार कर देता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और जो शख्स मानता है कि जुमा फर्ज है, इसका फर्ज होना मानने के बावजूद बगैर उज़्र शरई के जानबूझकर जुमा की नमाज को छोड़ देता है, ऐसा शख्स गुनाहगार है, सख्त नजायज अमल है, और ऐसे शख्स को कहा गया कि यह कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। अलबत्ता काफिर नहीं होता, गुनाहगार जरूर है, लेकिन दायरा इस्लाम से यह खारिज नहीं होता। अहादीस मुबारका में इसके ऊपर बहुत सारी वईदें बयान की गई हैं, बल्कि एक रिवायत में यह भी है कि जो 3 जुम्मे सुस्ती की वजह से छोड़ देता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके दिल के ऊपर मोहर कर देता है। और एक दूसरी रिवायत में है कि जो 3 जुम्मे, सिर्फ 3 जुम्मे ये बगैर किसी उजर के छोड़ देता है, ये ऐसा बंदा, ये तो मुनाफिक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो इसकी मुजम्मत में बयान की गई और अहादीस के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक हदीस मुबारक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि मैंने ये इरादा किया कि एक शख्स को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूं, और जो लोग जुम्मा छोड़ देते हैं यानी पीछे रह जाते हैं, उनके घरों को जाके जला दूं। और यह कितनी बड़ी बात है। तो बहुत सारी वईदे अहादीस के अंदर जुम्मे की नमाज को तर्क करने के ऊपर मौजूद है। और जहां तक यह बात है कि जो शख्स जान बूझ कर 3 जुम्मा छोड़ दे तो वह दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, ऐसी कोई रिवायत किसी मोतबर किताब से हमारी नजर से नहीं गुजरी। लेकिन मदनी चैनल के नाजरीन, जुम्मा हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा आता है, तो इसमें कोशिश करनी चाहिए जैसे अजान जुम्मा हो जाए सही करें, तैयारी करें और नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद में पहुंचे। मजीद सवाल चलाइए।
मेरा नाम अवैस, और मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि बाज़ लोग कहते हैं कि एक नमाज कज़ा करने पर 80 बरस जहन्नम में लटकाया जाएगा, क्या ये हदीस दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो इसका हवाला बयान कर दें।
बग़ैर किसी वजह शरई के एक वक्त की भी नमाज कज़ा कर देना ये सख्त कबीरा गुनाह है, नाजायज़ अमल है, ये हराम काम है। ऐसा शख्स हजारों साल, सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रिज़विया शरीफ में एक मकाम पर लिखा कि ऐसा शख्स हजारों बरस जहन्नम में रहने का मुस्तहिक है जब तक के तौबा करके उस नमाज की कजा न कर ले। कुरान और हदीस में नमाज कजा करने की शदीद मुजम्मत को बयान किया गया। ऐसे बदनसीब का जो नाम है वो जहन्नम के उस दरवाजे के ऊपर लिख दिया जाता है कि जिससे गुजर कर इसने जहन्नम में दाखिल होना है। तो लिहाजा हर मुसलमान पर लाजिम है कि वह नमाजों की पाबंदी करे, और इस मामले में हरगिज हरगिज थोड़ी सी भी कोताही और सुस्ती का मुजाहरा न करे, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے, اور اللہ کی ناراضی جو ہے یہ آخرت میں شدید عذاب کا سامنا کرنے کے لیے کافی ہے. البتہ جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ کسی نے ایک نماز قضا کر دی تو 80 برس جہنم کی آگ میں لٹکایا جائے گا, کسی معتبر کتاب میں ایسی کوئی حدیث مذکور نہیں ہے. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کوئی بھی حدیث مبارک جب تک آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھ نہیں لیتے, یا کوئی مستند عالم دین کہ جن کا ایک اچھا مطالعہ ہوتا ہے, فتویٰ دیتے ہیں اور بہت زیادہ ان کا مطالعہ ہے, اور جب بات کرتے ہیں اتھنٹک بات کرتے ہیں اور حوالے سے بیان کرتے ہیں, جب تک ایسے کسی عالم دین سے نہ سنیں تب تک اس کو آگے بیان نہ کریں. مزید سوال چلائیے.
میرا نام محمد الیاس ستاری ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے, سجدہ صاحب سے قبل ایک جانب جو سلام پھیرا جاتا ہے, اگر سلام نہ پھیرا جائے اور ویسے ہی سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل کر لی جائے تو کیا حکم ہے, کیا نماز ہو جائے گی؟ رہنمائی فرمائیے.
سجدہ صاحب جب کیا جاتا ہے تو دائیں طرف سلام پھیرا جاتا ہے, پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں. یہ عمل افضل بھی ہے اور اولا بھی یہی ہے. جان بوجھ کر ایک طرف سلام پھیرے بغیر سجدے میں چلے جانا اور بغیر سلام کے ہی سجدہ کر لینا, یہ مکروہ تنزیہی اور ناپسندیدہ عمل ہے, اگرچہ کہ نماز ہو جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم.
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز, ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.